श्रीमद् भागवतम क्लास बाय हिज ग्रेस बुढ़ाकेश प्रभु जी 10th कैंटो फर्स्ट चैप्टर 31st श्लोक
ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र को यहाँ वर्णन किया गया है और सुनिश्चित गौरी वैष्णव होने के नाते हम सब लोग भी इन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए हम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की चेष्टा करते हैं या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना हमारे लिए बहुत आनंदप्रद रहता है। ये देखा जाता है कि जिनका हृदय जिस इष्ट में आसक्त है, जिनका हृदय जिस अवतार को पूज्य मानते हैं, उनका चरित्र सुनना उनके लिए अत्यंत प्रीतिकर है। जैसे महाराज परीक्षित, उनके इष्टदेव का चरित्र सुनने के लिए कितना लालायित है, वैसी अध्याय के प्रथम 7-8-10 श्लोक में पता चलता है। तो उसी प्रकार हम लोग भी इन कृष्ण चरित्र सुनने के लिए इच्छुक लालायित थे, अतः राधा गिरधारी ने अंतर्दशम स्कंद में पहुंचा दिया और उस क्रम के साथ आप लोग इसको सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाहर ज्यादा घूमकर व्यक्ति हूं, लेकिन आप लोग क्रम से सुंदर तरीके से बात करते हैं। तो इन पाठ्यक्रम के अनुसार 2-3 श्लोक में जो तात्पर्य नहीं है, इसलिए इस श्लोक को सीधा पढ़ना भी उचित नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी बाद महाराज परीक्षित को भगवान के जन्म का उपक्रम बताने के लिए वो उन मथुरा मंडल का बात किए कि किस प्रकार इन मथुरा में तो ये सुप्रसिद्ध का राज्य था, तो इसका बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन राजाएं जो ये यदुकुल में आने वाले राजा है, तो वे उन मथुरा को अपनी राजधानी बनाए और उन मथुरा का महात्म्य गाते हुए कहते कि मथुरा भगवान के तो नित्य सन्निहित तो हरि है। उन मथुरा सुनिश्चित उन भक्तों की राजधानी आज भी है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की राजधानी होगी, उनमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। वो शुरू से और जब तक मथुरा रहता है वो शाश्वत धाम है, जब तक इस धाम पर श्री मथुरा जी विराजमान रहते हैं तब तक वो उन रसिक जनों की राजधानी रहता है। ब्रजमंडल जो भगवान के प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी जन है, तो उनके लिए राजधानी है। अब तो कहते राजधानी तत्साबु सर्व यादव भोजा, उन यादवों की राजधानी श्री मथुरा, जहां भगवान हरि नित्य सन्निहित रहते हैं, नित्य निवास करते हैं। भगवान की इन नित्य निवास स्थली श्री मथुरा मंडल को बताया सुखदेव गोस्वामी पाद में और कहते कि तस्याम तु कहचित चौरी वसुदेव कृतो उद्वह, मरे मथुरा में, तस्याम का अर्थ उसी मथुरा में। तो कहते किसी समय ऐसा बोले कहचित जो सुरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह हुआ कृत उद्भव, उन विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद वो कहते उन देवकी के साथ अपनी पत्नी देवकी के साथ देवक्या सूर्या सा अर्धम प्रयाण रसम आरोह, कहते हैं उसी मथुरा मंडल से उन देवकी के साथ श्री वसुदेव जी जब प्रयाण कर रहे थे उस टाइम की एक घटना का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बात करते हैं। तो ये तत्सम शब्द के ऊपर श्री जीव गोस्वामी बात लिखे हैं कि किस प्रकार कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ, इस प्रकरण को बताने के लिए ये तत्स्याम शब्द लिखा गया है या उस उपक्रम को बताने के लिए कि भगवान का जेल में जन्म हुआ, इस घटना को बताने के लिए यहां से सुखदेव गोस्वामी बाद इसको प्रारंभ करते हैं। एक आचार्य इस श्लोक ने पिछले श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर टिप्पणी किए हैं श्री वल्लभाचार्य जी, हमको बहुत पसंद आया वो टिप्पणी। कहते हैं भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा के रूप में वो सब जगह व्याप्त होते हुए भी कहते हैं कि इसमें जो शब्द पिछले श्लोक में पाया गया कि सन्निहितो नित्यम सम्यक रूपेण निहित, लेकिन वो अपने हृदय के साथ वो वहां विराजते मथुरा में। श्री वल्लभाचार्य जी की श्रीनाथ जी में बहुत प्रीति है, अद्भुत प्रेम भगवान श्री कृष्ण के, अद्भुत प्रेमी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर कि जिस प्रकार एक जीवात्मा पूरे शरीर में व्याप्त होते हुए भी वो हृदय में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान सर्वत्र परमात्मा के रूप में है, पर व्याप्त होते हुए भी भगवान उन मथुरा मंडल में अपना निवास स्थान बनाए, अपने जन्म स्थली मथुरा को चूज किया। इसी से इन मथुरा का महात्म्य अत्यंत बढ़ गया है। जो श्लोक मुगतकल बीता माधवाचार्य सॉरी मदन उन्होंने लिया था ना, तो बहुत सुंदर तात्पर्य में उपाजी ने इसमें दिया है। तो उसी मथुरा मंडल में वसुदेव जी का विवाह हुआ। सुरसेन का बहुत पुत्र होने के नाते हमारे आचार्य लोग लिखते हैं, कहते उदेव शब्द देकर के कहते कृतो उद्भव देवक्या, और वसुदेव जी को सौरी कहते हैं, सौरी का अर्थ उस सुरसेन के पुत्र है। तो उनका विवाह वहां हुआ और देवक्या और सूर्या साधन, सूर्या का अर्थ उन दीप्यमान देव की आचार्य लिखते हैं। तो भगवान की मां थी सहज स्वाभाविक, लेकिन विवाह के कारण वो अत्यंत सजी धजी थी, इसलिए कहते हैं कि सूर्या अथवा जिनका विवाह नया नया होता है उनको भी इस प्रकार उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि वो इस प्रकार अपने पति के साथ उन रथ में आरूढ़ होकर के जब जाने लगी तो उस समय दो घटना का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं कि उनके पिता ने कितना दहेज दिया था, खास करके आज का जो श्लोक लिखा गया है गौर के पर वो दहेज के विषय में लिखा गया है, तो कितना दहेज दिया था। और दूसरी बात, उग्रसेन का पुत्र कंस जो अपनी दुष्टता के कारण बहुत ख्यात था, वो बहन का प्रेमी बन रहा था। इस घटना को भी वो बता रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, उगसेन सुतः कंस ससुर प्रिय चिकित्सा और रश्मिन हयानाम जग्राह रोग में सत्य ही कृत रथ सत्यर वृत्त आवृत। रथ सत्यर वृत्त का अर्थ है सौ सौ रसों से आवृत। कैसे रथ थे? रुक में सुवर्ण के रथ बने हुए थे। जिस रथ थे उनके अगल बगल तो उनमें से एक रथ जिनके ऊपर उनकी बहन अपने ससुराल जा रही थी, तो कंस ने बड़े प्रेम के कारण या स्नेह से, और जिस पर वसुदेव और देवकी विराजमान थे उस मुख्य रथ के ऊपर चढ़ करके उन सार स्थान ले लिया और रथ को हाँकने लगे। तो अब दो बार एक बताया गया है उनको कि उग्रसेन सुत, एक बार कहा कि उग्रसेन सुत, तो कंस कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वही उनके बाद में एक महान सत्तावान व्यक्ति था, एक महान पुत्र के रूप में वही था सत्ता जिनके हाथ में जाने वाली थी। कहते तो उग्रसेन सुत कंस, हमारे आचार्य लोग लिख रहे हैं तो उग्रसेन सुत कहने से आप लोग सब जानते हैं कि उनका उत्पत्ति स्थान या उनका उत्पत्ति प्रकार हुआ था एक असुर के रूप में। एक कोई ठीक वेला में उनका गर्भाधान नहीं हुआ था, इसलिए वो असुर आकर के उनके पत्नी को गर्भ पकड़ लिया था वो काल ने भी। तो कंस, कंस का अर्थ एक आचार्य लिखते हैं, कहते नहीं जुगत से ही बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि उनकी अत्यंत वो दुष्टता कुख्याति थी, इसलिए एक कंस शब्द लिखा गया है। लेकिन क्योंकि उनकी बहन जा रही थी तो स्वाभाविक जैसे पशु लोग को भी, जैसे रानी पशु होते हैं सिंह वगैरह, तो उनको भी अपने परिवार में प्रेम होता है, उस प्रकार ये क्रूर होते हुए भी तो थोड़ा स्नेह उनके हृदय में था, लेकिन ऊपर ऊपर का स्नेह था वो तो बाद में पता चलेगा। कथा में सब हम लोग सब जानते भी है, इन कथा को बार बार आलोचना करते रहते हैं है? तो ससुर प्रिय चिकित्सा, वो अपनी बहन समझते हुए उन बहन का प्रिय करने के लिए उन हयानम रश्मि जग्रा उन्होंने उन अश्वों की रास को पकड़ लिया अपने हाथ, सारथी बैठा होगा उनको उतार दिया, मैं उनको पकड़ूंगा और बहन को लेकर के। तो उपाजी लिखते हैं पटपट इस बात को भी, वो लिखे कि आज भी वो प्रथा है हिंदू समाज में जो उन वैदिक संस्कृति के अत्यंत निकटतर कोई समाज है तो वो हिंदू समाज है आज का। तो अत्यंत निकट होने के कारण वो वैदिक प्रथा आज भी हम लोग अपने संस्कार में वो पाते हैं, इसे कभी कभी ऐसे उन परिवार को प्राप्त करके भक्त लोग अपने को कृतकृत मानते हैं। जहां स्वाभाविक इन आज संस्कार का पालन होता है, वस्तुतः तो ऐसा ऐसे परिवार में जन्म मिलना वो बहुत भाग्य का बात है, क्या प्रबल भाग्य होता है वो ऐसे परिवार में जन्म प्राप्त करते हैं। एक बार एक भक्ति ने मुझे बता रही थी कि ये जो यहाँ का वो फॉरनर थी, माता फॉरनर है आज भी है, तो कह रही थी कि हिंदू समाज अत्यंत निकट है, और उनको बहुत प्रिय है आचरण, वो बड़े प्रेम से, और उन्होंने वो हमेशा साड़ी धारण करके रहती है, उनको अति प्रेम है वो इस आचरण में, और हमारे संस्कार में एक एक संस्कार वो पूछा करती है। तो एक दिन उनको उनके भक्त के साथ चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था, बोलो एकदम निकट है वैदिक संस्कार से, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि निकट होते हुए भी वो जैसे एक ही शरीर में पीठ वाला भाग भी होता है ना, मतलब हिंदू संस्कार स्थिति आज ऐसा है जो कुछ भी हो लेकिन ये अंग है। मैंने कहा बोलो ठीक है, जो कुछ भी आप कह लेते हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कि उनकी पीठ है या उनके पीछे के भाग में है भगवान के, कुछ भी लेकिन है अंग। मैंने पूर्ति किया था उस समय, बोला है अंग ना, आखिर अंग है तो भगवान का तो अंग है ना, भले ही पीठ हो जिसमें अधर्म निवास करता है, लेकिन दूरगत नहीं स्थिति से बहुत अच्छा स्थिति है जहां पर ऐसा संस्कार। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर कि आज भी ये वैदिक संस्कार इन परिवार कई परिवार में ये वैदिक संस्कार पाए जाते, लगभग हिंदू परिवार में इन आज संस्कारों को पाया जाता है, तो उसमें से एक दहेज, तो ये दहेज का वर्णन और दो वर्णन किया प्रभुपाद जी ने, एक दहेज का और भाई अपनी बहन के साथ जाते हैं। प्रथा हम देखते हैं गुजरात में, हम लोग पाए पाते हैं, पता नहीं दूसरे शायद यूपी में भी मैंने देखा था, भाई जाता है और स्वाभाविक है कि वहां उनको एक नया नया घर है तो उनको ऐसा होना चाहिए बिचारी को कि देखो मेरा कोई ना कोई तो यहां मेरे साथ में है, मेरे परिवार वाले कोई है। तो श्री प्रभुपाद महाराज इसलिए लिखा, और यहां ये भाव नहीं है पर फिर भी जैसे एक सामान्य प्राणियों में भी प्रीति होता है अपने उन समाज में, उसी प्रकार का ये प्रीति है। तो कंस बैठ गया और जगदार रूप में आरा रथ सत्य आवृत्तम कहते हैं, उस प्रकार उस रथ का उन्होंने रास ग्रहण किया जिस रथ को रथ के अगल बगल में 100-100 रथ चलते थे, तो 100-100 रथ चलते थे तो उनको कहने के लिए अब ये दहेज का वर्णन बोल रहे हैं कि 100-100 रथ छोड़ के चल रहे थे, मैंने हाँ 1800 रथ दिए थे देवक ने, 1800 रथ दिए और सुवर्ण के पत्रे से मढ़े हुए रथ अगल बगल में चल रहे थे, बीच में वो रथ चल रहा था। इसको कहने के लिए चतुशतम पारिबरम गजानाम हेम मालिन, वो रथ का बात छोड़ लीजिए, पहले दूसरा देश का बात भी कर रहे हैं, कहते हैं कि चतुशतम 400 हाथी दिया था और जिनके गले में हेम सुवर्ण का मालाए था, छोटी छोटी चैन नहीं जो हम लोग अभी बना करके पहनते, मालाए हेम मालिना, माला कर तो माला होगा, तो कहते हैं कि ऐसे 400 हाथी की माला के साथ उन दहेज में दिया था, अश्वानाम अयुतम सारदम और 1500 घोड़े, अयुत कहते हजार को, 1000 सा और दम और आधा 1000 का 500, तो 1500 घोड़े और रथानाम च 63। 63 कहते 6 × 3 त्रिशतम 70 18 सत कहते हैं 6 को उनको तीन बार करने से तिरसठ सप्तम तो 1800 उन्होंने रथ दिए थे। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वै सते सम अलंकृत है। और साथ में 200 दासियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्जित, पूरा गहना जो होना चाहिए स्त्री के शरीर में पूरे गहने से सजी धजी 200 दासियां सुकुमारी नाम जिनका विवाह नहीं हुआ था, ऐसी दासियां। ये तो राजकुमारी जा रही है ना सच, तो राजकुमारी के साथ राजा तो बहुत बहुत दासियों को भी उन्होंने दान दिया था अपनी बेटी को, क्योंकि वो दुहित्री वत्सल है, अपनी बेटी को बहुत अपनी बेटी के प्रेमी थे। सहज पिता का प्रेम पुत्री में चलता है, आज भी स्वभाव है पिताजी का प्रेम पुत्री में और माता का पुत्र में होता है, माता पुत्र में ज्यादा आसक्त रहती है। और सहज है उनके लिए पुत्र में आसक्त, लेकिन पिताजी प्राय देखा जाता है कि पुत्री के प्रति वो वत्सल रहते हैं। इसलिए पुत्री जब ससुराल भी चली जाती है तो ससुराल तो गई लेकिन इधर पिता अपने हृदय में सदैव रखता है पुत्री को, और वत्सलता के कारण। तो दहज देना उनको उनका कारण बता रहे दुहित्री वत्सल। तो देवक ने अपनी पुत्री को जब वो विदाई दे रहे थे तो उस टाइम इतना बड़ा दहया, तो दहज की प्रथा ये वैदिक संस्कार में आती है। उसको कहने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि देखो वो बिचारी क्या लेकर के जाती है, कोई भाई के पास से कुछ कभी भाग नहीं मांगती है हमारा कुछ। अभी आज दूसरा बात हो गया है उनका कलयुग के कारण कोर्ट में चली जाती है बहने, और कभी कभी मंदिर को बेची हुई लैंड में भी अपना हिस्सा लेने के लिए जाती है, वो दूसरा बात है। अभी तत्काल भावनगर एक मंदिर के लिए एक लैंड का सौदा हुआ तो भाई ने तो अपनी जमीन बेच दिया था, उनके बाद लैंड करके अर गई, बोलते मैं तो साइन नहीं करूंगी। और आज ऐसा नियम भी निकल गया है, पहले कोई ऐसा रूल नहीं था, ये नियम सब बाद में बन गए। बेटी लोग को अधिकार नहीं दिया जाता था, अधिकार जैसा पिता बोले उस प्रकार अधिकार था, वो जिनको चाहे दो चार पुत्र है वो जिनको भी चाहे उनको राज्य दे सकते हैं। जैसे महाराज याति उनके छोटे पुत्र को राज्य दिया, वो जिनको चाहे उनको दे सकते, ये पिता के जिम्मे में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये सब संस्कार बिगड़ते 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 इतना बिगड़ गया तो लड़कियां भी अपना दावा कोर्ट में दाखिल करते हैं, हमको चाहिए। अब उनको मालूम है कि मंदिर को बेची गई जमीन थी, मैं उस पर विचार कर रहा था कि देखो देखिए क्या आज का युग है, वस्तु तो ये कलयुग के कारण हो रहा है। स्वाभाविक उन भाइयों का हिस्सा जाता है, इसीलिए एक पिता अपनी पुत्री को देते हैं लेकिन प्रेम से जो दे वो ले लेना चाहिए, वो डिमांड भी नहीं करनी चाहिए पुत्रियों को, क्योंकि वस्तु तो वो दो परिवार के लिए उनका जीवन होता है। कुछ दुर्भाग्य से स्त्री का शरीर मिलता है, ये दुर्भाग्य है, वस्तु तो जीव के दुर्भाग्य पर स्त्री शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति हमेशा बती रहती है दो परिवार में, वहां क्या हुआ होगा, यहाँ का चिंता वहां का चिंता, सचिंता चिंता चिंता, बेचारी चिंतन नहीं कर पाती है भगवान का, नहीं भक्त भक्त जिसने कुंती महारानी प्रार्थना की है, भगवान आप हमारे पर ऐसी कृपा कीजिए कि इन दोनों परिवार से, यादव और कौरव परिवार से हमारा मति छूटे। कुंती जी इसलिए प्रार्थना किया तो दोनों परिवार में उनका हृदय बटा रहता है। ये इस दुख का कारण है, जब आसक्ति जहां ज्यादा है वो दुख का कारण, और सहज दुख भोगने के लिए स्त्री शरीर सहज दुख को अदा करती है, ये तो पाया जाता है। तो खैर, लेकिन पिता जितना दे उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, कोई डिमांड नहीं करना चाहिए। और हमारे संस्कार के अनुसार प्राय अभी तक तो ऐसा चलता आ रहा है परिवार में कि आज भी स्त्रियां उनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं करती, कोई धन संपत्ति का वो सहज मान लेती है कि जो पिता ने दिया वही ठीक है। लेकिन कोई कोई अभी एक केस बन जाता है, इसीलिए अभी साइन लेना प्रारंभ किया है, सब बहनों का साइन चाहिए प्रॉपर्टी में है? ये कहीं दखल न करे, इसलिए साइन ले लेते हैं। जो भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो कहते हैं, कहते कि सामान्य पिता का स्नेह होता है पुत्री के प्रति, इसलिए ये दहेज का प्रथा है और वो देना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल राजाओं को नहीं है? सभी संपन्न परिवार को ये चाहिए कि अपनी पुत्री को वो अपने हिसाब से दें, देना चाहिए। तो पुत्रों को केवल नहीं देना चाहिए, पुत्री लोग को भी देना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है कि वो लोग कर्जा ले ले करके देते हैं, कर्जा करके भी वो नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं संपन्न होने से देना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वो पुत्रियों को देते हैं, कर्जा करके भी पुत्रियों को देते हैं। लेकिन ये दहेज मांगने का प्रथा कभी नहीं था, ये कलयुग के लोभ के कारण हो गया है। स्कूटर तो क्या क्या मांगते थे, कार चाहिए दूल्हे के लिए, और कभी इसलिए विवाह भी विच्छेद हो जाता है। ये सब कलयुग ने खड़ा किया कलह है, ऐसा वैदिक संस्कार में दान है। लेकिन यूपी में मैं प्राय देखता हूं, उत्तर प्रदेश में वो लड़के लोग बहुत डिमांड करते हैं, टेलीविजन का डिमांड तो है। अभी बच्चों जो विषय सुख है उनका वो डिमांड रखते हैं कि हमको ये चाहिए वह चाहिए वह चाहिए, ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए, न तो परिवार के द्वारा और न तो स्त्रियों के द्वारा। पिताजी जो दें उसे भी संतुष्ट रहना चाहिए। राज्य दो आचार्यों का आयुर्भाव तिथि भी है और हम लोग जैसे गा रहे थे उन भगवान के महान प्रेमीजन, उसमें दशकानंद प्रभु का चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है। वो एक राज परिवार में उत्पन्न हुए, उनके पिताजी राजा थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे। 1300 साल हुआ तो उनके पूर्व ये पूरा इंडिया इन बटा हुआ था, अनेक राज्य में बटा हुआ एक हिंदुस्तान था। तो उसी में एक राज्य के वो उड़ीसा सॉरी बंगाल के एक प्रांत के, छोटे से प्रांत के राजा थे उनके पिताजी। तो रसिकानंद जी का जन्म ऐसे राज परिवार, लेकिन वो राजा तो थे लेकिन उनका कुल थोड़ा हीन था ऐसा लिखा है। लेकिन वैष्णव कोई जाति कुल धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, और उसमें भी भगवान के वो पार्षद थे, वरंग महाप्रभु पार्षद। इसलिए रसिकानंद जी भी उसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न थे एक राजपूत के यहाँ उनका प्रागट्य हुआ था। लेकिन भगवान के प्रेमी जहां भी प्रकट होते हैं वो न तो संसार को प्रेम करते हैं और न तो किसी का प्रेमी कभी नहीं होते। तो के अनुसार उनका बचपन का जीवनी कुछ ज्यादा उनके जीवनी का नहीं लिखा है, लेकिन उन अराजोचित व्यवहार के अनुसार उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी उनके भजन में बहुत अनुकूल थी, ऐसा लिखते हैं, इसलिए वो अपने माता पिता का सेवा खूब किया रसिकानंद जी। लेकिन वो सदैव उन गौरांग महाप्रभु के लिए व्याकुल रहता था उनका हृदय, क्योंकि उनके पार्षद थे तो सदैव वो व्याकुल रहते थे। और उन्होंने गुरु भी चमत्कारिक रूप से प्राप्त किया सामानंद प्रभु को। वो एक दिन उन रोते हुए सारी रात रोए, वो सामानंद जी सामानंद जी बोल भी रहे थे, उन्होंने नाम सुना था, उस टाइम ख्यात था सामानंद जी, एक विख्यात वैष्णव के रूप में बहुत ख्यात हो चुके थे। तो वो और रो रहे थे, तो उन्होंने सपनों में आकर के कहा कि रो मत व्याकुल, ज्यादा मत हो, आज सुबह होते ही मैं तुमको दर्शन दूंगा। और हुआ ऐसा कि जैसे ही सुबह हुआ वो थोड़ा तंद्रा लगा था, पूरा रात रोए थे, तो सुबह अत्यंत मॉर्निंग में भोर लगभग 3 बजे सपना लगा था उनको, उन सपनों में सामान्य को उन्होंने दर्शन दिया था। तो सुबह होते बोले सुबह में मैं तुमको मिलूंगा, सुबह होते ही सामानंद का दर्शन उनको वो अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करते हुए प्रकांड रचित सामानंद प्रभु उनके सामने उपस्थित हुए और गुरु रूप में उन्होंने सामानंद जी को ग्रहण किया, उसका आनंद किया। उनके विषय में बहुत 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 चर्चा है, लेकिन कई चर्चा में नहीं जाते हुए एक अनेक चमत्कारी घटनाएं उनके जीवन में, लेकिन उनमें एक घटना कि कुछ यवन लोग उनके ऊपर इतना जब उनके फॉलोअर बनने लगे तो उनके ऊपर उन यवन लोग गुस्से होकर के 2 पागल हाथी को भेज दिया, प्रमत्त हाथी को। सामानंद जी के ये अद्भुत चरित्र सामानंद जी के प्रताप के कारण वो 2 पागल हाथी उनके शिष्य हो गए, ऐसा लिखते हैं। तो न केवल महाप्रभु लेकिन जान भी इसी प्रकार पशुओं को प्रेम उनके द्वारा दिया हुआ दिखाई पड़ता है। वो दोनों हाथी सदैव उनके साथ रहे। वो ये घटना को देख करके वो लोग आश्चर्यचकित हो गए और बहुत सारे राजा उड़ीसा के बंगाल के राजा लोग फिर उनका आश्रय ग्रहण किया इसी घटना के कारण। बहुत ही ख्यात हो गई वो घटना और उसके कारण बड़े बड़े राजा लोग तो उनके गुरु महाराज ने उनकी ख्याति से श्री राधा वल्लभ जी का सेवा उनको दिया, जो खुद करते थे श्यामानंद प्रभु राधा वल्लभ का सेवा करते थे, वो विग्रह उनको दिया, राधा वल्लभ जी विग्रह उनको सेवा के लिए प्रदान किया श्यामानंद प्रभु ने। और उनकी वो सेवा पूजा बहुत बढ़िया से करते थे रख करके, और वो सदैव गृहस्थ रहे, विरक्त नहीं रहे, विरक्त जीवन उन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन गृहस्थ में भी वो इतने विरक्त थे, उनकी विरक्ति भी ख्यात थी, इसलिए बड़े बड़े राजा लोग उनसे आकृष्ट हो गए थे। मतलब राजा होते हुए भी इतना धनी होते हुए भी जब वो विरक्त रहते हैं, इससे उनकी बहुत ख्याति बनी थी। और इस प्रकार उनका सेवा पूजा बहुत बहुत तरीके से वो अनेक ऐश्वर्य से चलता था, राज परिवार में वो थे ही, धन का कोई कमी नहीं था। राजा जी ढंग से भगवान का सेवा उनके द्वारा संपन्न हुआ। और एक दिन का घटना बताते हैं, वो आज का ही दिन था, क्या अपने सात शिष्यों को लेकर के वो कीर्तन करते हुए इन दादा वल्लभ जी के मंदिर में गए, और मंदिर में गए नहीं सॉरी साक्षी गोपाल याद आया, वो साक्षी गोपाल दर्शन के लिए गए थे, साक्षी गोपाल नहीं रेमुना सॉरी तो मुझे भी याद इतना याद नहीं रहा है, रेमुना में गए थे गोपीनाथ दर्शन के लिए अपने सात शिष्यों को लेकर के, और वो रेमुना में गए जब उन गोपाल जी के दर्शन के लिए, तो उन विग्रह को देखते हुए वो बहुत आकृष्ट होकर के वो कीर्तन करने लगे, और इतना नाचगान करते हुए वो अंदर चले गए, और अंदर जाकर के सब लोग ने देखा कि वो गोपाल जी में समाधि, इसलिए उनकी पुष्प समाधि वो रेमुना में इन मंदिर के निकट ही पुष्प समाधि है, क्योंकि देर तो रहा नहीं तो पुष्प समाधि रसिकानंद जी की वहां पर भक्त लोग जाकर दर्शन करते आज भी रेमुना में उन मंदिर के निकट ही उनके समाधि मंदिर में ही है, मंदिर में उनकी समाधि मंदिर है रसिकानंद जी का, वहां जाकर के वैष्णव लोग दर्शन लेते हैं, दर्शन प्राप्त करके अपने को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार का एक शॉर्ट उनका जीवन चरित्र जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का चरित्र आप लोग बार बार सुनते ही है और ख्यात चरित्र है। तो आज ये दो आचार्य रात्रि व तिथि है, तो उन तिथि पर हमको प्रार्थना करना चाहिए और अत्यंत कातर होकर के दीन होकर के उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरित्र को बार बार पाठ करना चाहिए, और ऐसा करने से उन विष्णु की कृपा से हमें भी उनके हृदय में जो प्रेम हुआ है भगवान के प्रति प्रेम उनके हृदय में जो है उन प्रेम का संचार हो सकता है। तो हम सब लोग का कर्तव्य बनता है कि आज इन चरित्रों को पढ़ें और उनके लिए कुछ जपमाला ज्यादा करें इत्यादि करने से उनकी प्रसन्नता को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव भगवान नाम जहाँ ज्यादा लिया जाता है और भगवान के प्रति स्नेह ज्यादा देखते हैं तो वहीं पर उनकी प्रसन्नता जाती है, उनका आशीर्वाद उतरते हैं, तो वो आशीर्वाद को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। श्री रसिकानंद प्रभु की धर्मनाथ दास बाबा जी महाराज की श्री राधा गिरधारी जी की यंत्रराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निदाय गौर हरि प्रमनंद पंचाकल्प सर्वस्य कृपा सिंधु पतितनम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।